ये पायल जमीन तक पहुंचता नहीं। कोई वक्त था जब काफिज नहीं होते थे। अल्लाह का शुक्र है कि पिछली नस्लें गुजरी, उन्होंने बहुत मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज होने लगे। एक वक्त ऐसा भी था जब हरमैन शरीफैन में, मक्का मुकर्रमा में, हरम में हाफिज नहीं होता था जो तरावीह पढ़ाए, और देखी वालों को अल्लाह जज़ाए खैर दे, खैरी बरादरान गए और उन्होंने काम शुरू किया। और अब माशाल्लाह जो कुछ है आप देखते, मसला अब ये नहीं रहा। मसला अब ये है कि यूरोप से जितने चैलेंजेस पिछली तीन सदियों से उठ रहे हैं उनका जवाब कौन दे? यूरोप से बहुत बड़ा चैलेंज उठा और उन्होंने बस हा बस की तहरी के बाद दुनिया को एक निज़ाम दिया और उन्होंने कहा कि ये डेमोक्रेसी है और इस पर दुनिया अमल करे। सदियों से इन मराहिल में से गुजर के अब जाकर अंदाजा हुआ कि कहीं भी खालिस जमहूरियत दुनिया में ना आई, वो अपने मुल्क के निज़ाम से, एजेंसी से, शख्सियात से किसी न किसी तरह मुतासर रही। और इंसान नाम का अगर कोई बस्ता है तो आज़ादी और सुख से सांस ना ले सके। असल बात मौलाना शम्स तबरेज़ ने कही, जिसे नकल किया मसनवी मारूम ने, और क्योंकि वो फिर मुर्शद थे अल्लामा इकबाल मरहूम के, तो इकबाल ने भी असरारे में खुदी के बिल्कुल शुरू में वो अशआर दे दिए और उन्होंने कहा कि हमारे शेर कल दोपहर में चराग पे हाथ रख के घूम गए थे शहर में, मुरीदान बासफा जिनको अपने पीर मुर्शिद के एतकाद था वो भी पीछे पीछे चल रहे थे, तो किसी ने जरा सी हिम्मत की, उसने कहा हजरत ये सूरज चढ़ा हुआ है और रोशनी है और जनाबे वाला क्या तलाश कर रहे हैं चला हाथ पे रख के? उन्होंने फरमाया कह दामदद मजलूम इंसान मारजूस, जो कुछ है सब ले लो, ये जो जिन्नात शयातीन हैं इनसे जी भर गया, इंसान का बच्चा शहर में तलाश कर रहा हूँ, कहीं मिले इंसान का बच्चा बोल दे। तो इंसान नाम की अगर कोई चीज बसती है तो वो आजाद सांस लेने से भी मालूम होगी। और फिर बहुत पहले के एहसास जब जन्म लिया तो एक शख्स ने 28-30 बरस अपनी एक किताब पे लगा दिए। अल्लाह करे हम सब इंग्लैंड जाएं और वहां उस शख्स की कुर्सी अभी महफूज है। और उसने अपनी किताब मुकम्मल की और दुनिया को कहा कि मुआशी निज़ाम ये होना चाहिए। 1917 का इंकलाब आया और 1994 ने साबित कर दिया 95 ने कि वो दुनिया को कोई हल नहीं दे सके। और अब फिर सतर जारी है पूरी दुनिया के मुफक्किरीन में कि दुनिया में निज़ाम सियासी तौर पे क्या होना चाहिए। यूरोप से ये चैलेंज था और कोई वक्त था जब इस चैलेंज का जवाब हमने दिया था। यूरोप से बहुत बड़ा चैलेंज है न्यूज का, न्यूज एजेंसी का, हम उसका क्या जवाब दे रहे हैं, ये हमारे सोचने की बात। हम बगैर किसी एग्जेजरेशन, मुबालगा, किसी और थर्ड पर्सनैलिटी बीच में कुछ नहीं, आपके सामने एक मिसाल पेश करते हैं। किसी वजह से सीरिया शाम जाना हुआ तो घर फोन किया तो खैरियत, तो उन्होंने कहा कि मियां की वो आज शाम में धमाका हुआ दमिश्क में और कितने सौ आदमी मर गए। उनका कुछ नहीं, दमिश्क में खड़े और बस इतना है कि हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स निकलते हैं चौक पे, चौक पे कामी मुखालिफ नारे लगाते चले जाते हैं, मिलता है यहाँ पे ये न्यूज आ रही। दोपहर के बाद शाम और रात तक दमिश्क में जो साहिब मुझे मिले पूछा कि शायद उनका कुछ थे, तो फिर अंदाजा हुआ कि जो कुछ खबरें किसी भी मीडिया के वास्ते से हम तक पहुंचती हैं उसका हाल यह है कि शायद बड़े बुरे हैं, कुछ नहीं है। और बदला वो आलम शोर किस चीज का, यमन पहुंचे फिर यही तजर्बा हुआ और वो खुलासा उसका ये कि मुसाफिर ये तेरा निशेमन नहीं, सिर्फ इस उम्मत में अपने बच्चों को हाफिज बना देने से काम चलता होता तो काम बिक चुका, निबट चुका होता। यूरोप से बहुत बड़ा चैलेंज उठा और वो अब तक कायम है कि कैंसर के लिए हमने क्या किया, मेडिकल में हमने दुनिया को क्या दिया। चीज और अगर आप इंसाफ से काम करें, लें और जायजा लें तो हर चैलेंज जो उठा है हम बिटे, हम किसी चैलेंज को अब तक कबूल नहीं कर सके। हज़रत रिसालत बना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस का मसला आ जाए, गुनाहगार से गुनाहगार आदमी भी कहता है कि मेरी जान लग जाए मगर उस इज्जत मुबारक के हल्क ना आए। लेकिन जो यूरोप ने असल में एतराजात किए थे कि आपके यहाँ गुलामी का निजाम क्यों चलता रहा, आप बांदियां क्यों बनाते रहे, आपके नबी अलैहिस्सलात उनके यहाँ शादियां इतनी क्यों नहीं थी, कम उम्र लड़कियों की शादियों का क्या मसला था, और इस जोरों शोर से मसाइल फिर से उठ रहे हैं कि हम कहते हैं जान ले लो, कत्ल कर दो, मगर जवाब ना पूछो। कोई ढंग की बात कोई जाकर समझा सके, कोई किताब लिख सके, कोई आर्टिकल लिख दे, ये हजरत ये असल बात है या गलतफहमी हो गई थी, असल सूरत हाल की है कि जितने चैलेंजेस आ रहे थे ये अब हमारी अगली नस्ल में खुद खुद के चैलेंज करेगी। अब वो दौर खत्म हो गया कि मौलवी साहब की जुबान पूरे इल्म का इंतजार उसके होता और इल्म वो था जिन्होंने फरमा दिया। मस्जिद में गांव में मौलवी साहब ने कह दिया कि भाई ये एक चीज है, हलाल है, हराम है, ये लोगों ने कहा हजरत जो आपने फरमाया ठीक है, अब हम हदीस सुनाते हैं, बच्चे शाम से पहले इंटरनेट पे पहुंच जाते हैं और पूछते हैं हजरत ये हदीस कहाँ आई है, इंटरनेट पे मिल नहीं गई। ये जो नस्ल अफवाह बन गई है ये तकरीबन तकरीबन वो नस्ल है जिन्होंने शऊर की बेदारी को हासिल किया है इंटरनेट के दौर में, और जो इनकी आगे औलादे हैं वो तो टोटली वो हैं जिन्होंने दुनिया में इस वसअत को देखा है और ये कल को उठ के हमारे बाद ये खुद मजहब पर एतराज करेंगे, पूछेंगे कि जनाबे वाला जी ये जो कुछ आप करते थे आपके अबाउ उस्ताद क्या करते थे, अगर दीन ये है तुमने सलाम कर, हम कर क्या रहे। और हमें अंदाजा शायद नहीं है कि इस वक्त दुनिया का बहुत बड़ा मसला इक्तिसादियात का, शायद ये कहीं रिकॉर्ड हो रही हो हमारी बात ना हो। आप याद रखिए इस वक्त दुनिया का बहुत बड़ा मसला जो इस्लामी इकॉनमी का है वो चंद साल के सामने आ जाएगा, और यहूदी पूरा इस्लाम का मालियाती निजाम लाके रखेंगे, उसकी हजरात हमारी उसे पढ़ेंगे, ईमानदारी से दस्तखत करेंगे कि हजरत जो आपने निजाम दिया है जो बिल्कुल ठीक निजाम है, इस्लाम के तकाजे यही है, और शाम को उस दूध की बालाई फिर न्यूयॉर्क पहुंचे। ये दिन दूर नहीं है, चंद साल की बात है। सारा आपका इस्लामी निजाम हमने अल अजहर में देखा मिस्र में, और वहां यहूदी मुलाकात हुई, पूछा गया क्या, उन्होंने कहा कि आपका निजाम क्या है मालियात का, हम छह फिकों का मुताला कर रहे हैं, हंबली मालिकी हनफी शाफई अहले हदीस हज़रात और शिया। उन्होंने कहा छह फिके आपके यहाँ काम करती है और हम बिल्कुल इसमें रिसर्च कर रहे हैं कि इस दुनिया में सुटेबल चीज सब क्या। ये जो इंग्लैंड ने दो साल से इस्लामिक बैंकिंग शुरू की है ये कोई बच्चों की बात नहीं है, ये चैलेंज है, और अगर 10-15 साल में उन्होंने इस्लामिक सिस्टम के तहत बैंक हमारे यहाँ कायम कर दिए तो आप पढ़े लिखे लोग हैं कि शाम को ये बालाई कहाँ चली जाएगी, और कोई दयानत तारीख इसकी मुखालफत नहीं कर सकेगा कि ये गैर शरई है। आपका एक मतलब फिक्र है, उन्होंने दलाइल से ये साबित किया है कि एक आदमी इन्वेस्टमेंट करे पैसे की और दूसरा अपनी प्रॉपर्टी की, ये मेरी दुकान है आप ऐसा इसके लगाव के कारोबार कीजिए, तो कहते हैं चाइस एक आपका पिता ऐसा भी है जो कहते हैं दोनों तरफ से और कैश होनी चाहिए, पैसे लाके खुद आप जायजा करना ये जायज नहीं है, अपने अपने दलाइल है। लेकिन एक मिसाल इसकी आपके सामने रखी कि जितनी भी इस्लामिक फाइनेंस में जो फर्क है उसको वो देख के उसमें से बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन उसका निकाल के रख देंगे, और हम उनके दबाव में अपने ममालिक में बगैर सूद के बैंकारी का निजाम कायम करेंगे, और शाम को ही होगा जब होगा। ये सब चैलेंजेस हम क्या करते चले। इसलिए रेहान से कहूँ या किससे कहूँ बच्चों उसका सिर्फ इससे हल नहीं होता, अभी आगे चलना चाहिए, इसके बाद पढ़ना चाहिए। हमारे पास वो दिमाग नहीं रहे जो लिखे पढ़े और इन चीजों का इस सूरत हाल का हल तलाश करे, हमारे पास बच्चे नहीं रहे। जो क्रीम है वो सारी काकूल में गई तो मेडिकल कॉलेज में 90% 95% हमारी बच्चियां इतनी पढ़ी लिखी और बच्चे जो कीमत से ला रही है, और उसके मुकाबले में ये दिमाग हमारे पास नहीं आता। कोई बच्चा ऐसा नहीं आता जिसका बाप भी कहे मेरे बेटे को आप पढ़ा दीजिए और बिल्कुल मैंने इससे कोई काम जिंदगी में नहीं लेना, इसके फाइनेंसिस मेरे जिम्मे है, मैं जानू और बच्चा जाने, आपसे पढ़ा लिखा इंसान ये हमारे पास बच्चे नहीं। जो रॉ मटेरियल मदारिस में आता है वही वहां से खप के निकलता है, और फिर आप जानते ही क्या। इसलिए करने का काम ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ फिक्स करा के छोड़ दें, करने का काम ये है कि लोग कुछ लोग उठे और कुर्बानी दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को फाइनेंस पढ़ाएं, اپنے بچوں کو مشرق کا طب پڑھائیں. یہ مشرق کا طب ختم ہوتا جا رہا ہے اور ویسٹ کی جتنی بھی علاج کے لیے دوائیاں آ رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر نظام مشرق میں تھا. اب چونکہ ہم نے پڑھا نہیں اس کے ہم اس کو کیا کہیں, لیکن ایسٹرن کنٹریز میں جو نظام قائم تھا وہ گوا سے دوائیاں دیتے تھے جو سیکھے, بس ایک اللہ کا اچھا بندہ ایسا تھا حکیم اجمل. حکیم اجمل نے طبیہ کالج قائم کیا تھا اور حکیم اجمل جتنے مخلص تھے, اب بچوں نے کیوں کر ان کا نام سنا ہوگا کہ انہوں نے اپنی روٹی اتاری اور کہا یہ بمبئی میں پیش آؤ اور دلی میں اتنا بڑا تاجر نہیں ہے جس کے پیسے دے اور طبیہ کالج قائم کرو. اور 1925-30 میں سونا مشکل سے 15-20 روپئے تولا ہوتا تھا, 20 لاکھ کا لیا جاتا تھا. حکیم اجمل نے کہا طبیہ کالج قائم کرو, ڈاکٹرز کو بٹھاؤ, حکیموں کو بٹھاؤ, میں خود بیٹھوں گا اور ہم بڑے نئے سرے سے کوئی سینا کو خرابی کو اس کو اس کو اس کو, اور میڈیکل میں ہمارے ڈاکٹرز بیٹھیں اور وہ کہیں کہ کون سی چیز غلط ہے پرانے طب کی, اب ٹھیک نہیں جو ٹھیک ہے وہ. جب اس مسئلے پہ آئے کہ دولی سینہ نے کہا کہ انسانی جسم میں خون دو طرح کا ہوتا ہے, ایک سارے بلڈ سرکولیشن باڈی میں ہوتی ہے اور ایک اسپیشل ہارٹ کے لیے ہوتا ہے, تو ڈاکٹر نے کہا حضرت یہ تھیوری پرانی ہوگی, اب کوئی نہیں مانتا, اسے ایک ہی بلڈ ہوتا ہے. انہوں نے کہا اس کو لکھو. بڑی بڑی دوائیاں, یہ طب مر گئے جب اپنی کے قریب ہے. مشرقی علوم سارے ایک ایک کر کے دم توڑتے جا رہے ہیں. فلسفے کا آدمی نہیں ملتا, منطق کا لاجک کا آدمی نہیں ملتا, میتھمیٹیشین نہیں ملتا, جیومیٹری پڑھانے اور پڑھنے والے اچھے ٹیچرز نہیں ملتے. یہ سب کچھ ہمارا سرمایہ تھا اور ہم نے سرمایہ کی بنیاد پہ صدیوں دنیا میں حکومتیں کی. اس لیے کہنے کے اس بچے نے آج سیکھ کیا, اللہ تعالیٰ اسے توفیق بخشے اور وفات تک اس کی بھی بات خدا کرے اس کتاب کو ساتھ لے کے اپنے اپنے وقت پھر ہم سب دنیا سے جائیں. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں حافظ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ جتنے چیلنجز اٹھ رہے ہیں اور جو تہذیب ہم پہ غالب آ رہی ہے ہم اس کا جواب نہیں دے پا رہے, اور بنیادی طور پہ جواب انسانوں نے دینا ہوتا ہے اور ہمارے پاس بچے ہیں. اللہ سے خیر دے, آپ کو شکریہ آپ کا.